सरस्वती देवी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी का हम सब अपने कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं। शुभ स्वागत है, शुभ स्वागत है। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, आप बहन जी का फूलों से स्वागत करें। इस इनसाइट सेशन का स्वागत नृत्य से हम आरंभ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ नर्तनशाला डांस एकेडमी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नृत्य की बोल है, दिल से स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया सभी कुमारियों का। अभी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी का विशेषता को सागर में घाघर में सागर को घाघर में भरने का प्रयास है। आप सीनियर राजयोगा मेडिटेशन टीचर और मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में पिछले 35 वर्षों से समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप शुरू में 12 साल मुंबई और हैदराबाद के राजयोगा सेंटर में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात अब आप पिछले 23 वर्षों से हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थित हैं। आप ब्रह्म कुमारीज के सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देश विदेश में कई कंट्रीज में अनेक इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटीज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट सेक्टर्स में जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है अपने हजारों प्रेजेंटेशंस दिए हैं। आप भारतवर्ष के मुख्य शास्त्र रामायण और श्रीमद् भगवद गीता का गहन अध्ययन किया है जिसका आध्यात्मिक रहस्य तथा शिक्षाओं का वर्तमान समय में हमारे आधुनिक जीवन में अपनाने की विधि आप बहुत ही कन्विंसिंग रूप में प्रेजेंट करती हैं। आपके लेक्चर्स सोनी चैनल, जी जागरण, संस्कार चैनल, आस्था चैनल और कई सिटी चैनल्स पर प्रसारित हुए हैं और वर्तमान समय आपके लेक्चर्स पीस ऑफ माइंड चैनल में नियमित रूप से प्रसारित हो रहे हैं। आपकी लिखी किताब सेल्फ मैनेजमेंट मैनेजिंग लीडरशिप इंग्लिश और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई है। आपकी लेक्चर्स मेडिटेशन एंड मैनेजमेंट सेशन के ऑडियो विजुअल सीडीज बने हैं जो आप ऑडियो विजुअल सीडी काउंटर में आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम सभी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषाबेन जी का सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। Welcome to this session on how to lead a stress-free life even while being in the media profession. क्योंकि मैं समझती हूं कि सबसे अधिक स्ट्रेस शायद मीडिया वालों को होगा, इसलिए कि आपको न्यूज कलेक्ट करने के लिए ऐसे हालातों के बीच जाना पड़ता है जहां ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, ऐसे माहौल में जाना पड़ता है कि जहां चारों तरफ एक इतना हैवी एटमॉस्फियर होता है कि जिस एटमॉस्फियर में न चाहते हुए भी कोई भी बंदा स्ट्रेस में आ ही जाता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि कई बार कई लोगों के मन में विचार आता है कि क्या इज इट पॉसिबल कि स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। कई लोग अनेक प्रकार के इल्यूजन मन के अंदर क्रिएट करते हैं कि संपूर्ण स्ट्रेस फ्री होना बहुत मुश्किल है, और इसलिए समझते हैं क्या हुआ है? चल नहीं रहा। और इसलिए इन इल्यूजन्स के बीच में ये विचार आता है कि क्या सचमुच स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, या स्ट्रेस हर एक के जीवन में आएगा, मैनेज कर लेना सीख लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए या स्ट्रेस फ्री प्रैक्टिकल है? क्या समझेंगे, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं कि स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं? हाँ, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं। बाकी सब कौन स्ट्रेस फ्री होना चाहते और कौन स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं? जरा हाथ तो खड़ा करेंगे स्ट्रेस मैनेज करने वाले, स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। ओके, और जो स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, अच्छा 50-50 लगभग है। इसीलिए मैंने कहा इल्यूजन, कि कई बार हम समझते हैं कि स्ट्रेस फ्री होना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज दुनिया में बीमार होकर के जीना कौन चाहता है? चाहे सामान्य सी बीमारी क्यों ना हो, सर्दी जुखाम बुखार, कि बुखार चलेगा ना, उसमें क्या हो गया, थोड़ा सीजनल ही तो है, डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? कोई बुखार में भी चलना चाहेगा हा? कि तुरंत इलाज करवाएंगे, क्या करेंगे? तुरंत इलाज करवाएंगे, कोई एक सामान्य बुखार वायरल ही क्यों ना हो, लेकिन उस वायरल या सीजनल चेंज का जो बुखार आता है उसको लेकर के भी 3 दिन से अधिक हो गया, 3 दिन तक तो कई बार इंतजार कर लेते हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही 3 दिन से ऊपर गया तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे कि भाई आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस डिजीज, कि मुझे बुखार भी नहीं होना चाहिए, मुझे इतना काम है। तो स्ट्रेस को लेकर के जीना क्यों चाहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो ये स्ट्रेस क्यों होता है मनुष्य जीवन में? आज बुखार क्यों आता है? किसी को भी अगर मान लो कि सर्दी जुखाम बुखार हुआ, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ और सर्दी जुखाम बुखार हुआ, डॉक्टर के पास आप जाएंगे और पूछेंगे भाई मुझे ये बुखार क्यों आया, डॉक्टर कह देगा वायरल है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे, लेकिन ये वायरल मुझे ही क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ? तो डॉक्टर क्या जवाब देंगे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? लॉजिक यही है, डॉक्टर यही कहेगा कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर कम है, इसीलिए चेंज ऑफ वेदर, उसमें जो वायरस थे वो वायरस ने आपको अटैक किया, आपका फिजिकल रेजिस्टेंस पावर लो होने कारण वो फाइट नहीं कर पाया और आप शिकार हो गए, सर्दी जुखाम बुखार हो गया। उसके लिए वो दो चीज देता है, एक एंटीबायोटिक देता है उस वायरस को खत्म करने के लिए, और दूसरी मल्टी विटामिन देता है ताकि ज्यादा कमजोरी ना आए, और उसके बाद एक सलाह देता है कि आगे से ऐसा न हो उसके लिए ठीक से भोजन किया करो, प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए बॉडी को, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, और तीसरा कहेगा एक्सरसाइज रेगुलर करते रहो, ये तीन चीज है तो शरीर स्वस्थ है, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर इम्यूनिटी आपकी अपडेटेड है। ठीक इसी तरह ये स्ट्रेस माना क्या, तो स्ट्रेस माना जब मेंटल रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है। तो हर छोटी बात मन को प्रभावित करती है और इसीलिए जब प्रभावित करती है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रेस का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, उसके बाद तनाव महसूस होने लगते, प्रेशर, एक प्रेशर महसूस करने लगते दिमाग के ऊपर, किसी ने कुछ कह दिया तो वो टेंशन के बाद फील होता है, बार बार सोचते हैं, नेगेटिव विचार चलाते हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई अच्छी भावना से कोई परिवार का कोई अपना कुछ कहने जाता है तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में और नेगेटिव थॉट्स, उससे हाइपर स्ट्रेस होने लगता है। तो ये स्ट्रेस माना क्या, कि जब हमारा मेंटल रेजिस्टेंस पावर कम हो गया, मेंटल इम्यूनिटी कम हो गई, तो ये सारे साइंस, ये सारे लक्षण दिखाई देने लग पड़ते हैं। फिर मनुष्य कहने में कह देता है पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, आजकल बहुत गुस्सा आता है, बस एक ही कमजोरी है मेरी कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कमजोरी है ना, एडमिट कर लिया कमजोरी है। ये कमजोरी किसकी है, शरीर की या आत्मा की, किसकी कमजोरी है, क्या कहेंगे, ये कमजोरी किसकी है, शरीर की या आत्मा की। आत्मा की कमजोरी है कि आत्मा में वो रूलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसलिए इरिटेशन आया और गुस्से के रूप में वो बाहर निकला। फिर सॉरी भी कर लेते हैं समय को देखते हुए, सॉरी आप मेरे भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना, है ना, रियलाइज कर लिया, बात को मोड़ लेते हैं, माना मेंटल रेजिस्टेंस पावर ठीक है इसीलिए मोड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग वो भी नहीं मोड़ सकते हैं, वहां ईगो आ जाता है और जब ईगो आ जाता है तो वो और भी क्लैशेस आरंभ कर देता है। तो इसलिए कहा कि मेंटल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन तो है नहीं या कोई एंटीबायोटिक तो है नहीं जो गुस्सा कम कर दे, आपकी कमजोरी को दूर कर दे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए ऐसे समय पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए और इसलिए सोचता है स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ और इस तरह के इल्यूजन में जीने लगता है कि आई थिंक आई नीड टू गो टू द डॉक्टर टू डायग्नाइज एंड ट्रीट माई स्ट्रेस। इसलिए आजकल साइकेट्रिस्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ चलो काउंसलिंग कर लेते हैं, हो सकता है वो हमें मदद कर दे, है ना। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, सच पूछो तो साइकेट्रिस्ट के पास कोई ऐसी मेडिसिन है नहीं जो आपका स्ट्रेस दूर कर सके, ऐसी कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी है कि जो आत्मा की कमजोरी को खत्म कर सके। वो लोग क्या कर देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं, आपका दिमाग थोड़ा डल कर देते हैं, डल करेगा तो सोचना नहीं होगा, और या तो एडवाइस करेंगे प्लीज कोई मेडिटेशन करना आरंभ करो, वो आपको हेल्प करेगा, मेडिटेशन की एडवाइस दे देंगे। वास्तव में ये फिजिकल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने का भी तरीका क्या है, आज हम आपको मेंटल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने का तरीका बताएंगे ताकि स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस मैनेज ही करना चाहिए। दूसरा इल्यूजन मनुष्य का यही है कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, एवरीडे लाइफ, जीना चाहिए, उसको लेकर के ही जीना चाहिए। और इसीलिए आज देखते हैं कि जब ये मन की कमजोरी बढ़ती जा रही है, आत्मा की कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। और जब वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, सुसाइड। एक एग्जामिनेशन में फेल हुआ बच्चा, सुसाइड। अब सोचो, एक पेपर एग्जामिनेशन को फेस नहीं कर सकता है वो बच्चा, रियल लाइफ सिचुएशन को क्या फेस करेगा। माना अभी से ही उसके अंदर ताकत नहीं है, और उस समय साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, और वो जब उसको ऐसे दवाइयां देता है जिससे उसका माइंड डल हो जाए, तो जीवन में आगे वो क्या कर सकेगा। इसीलिए डिप्रेशन वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, सोच 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 करके डिप्रेशन का शिकार बन जाना ही दिखाई देता है। और इसलिए तीसरा इल्यूजन है कि स्ट्रेस इज प्योरली अ फिजिकल फिनोमिना। ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है लोगों के जीवन में। एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन विल टेक इट अवे। रेस्ट कर लो, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। रेस्ट कर लेने से फिजिकली आपको शक्ति आएगी, मन को शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे समय में नींद आती नहीं है। इतने नेगेटिव विचार चलते हैं कि नींद कहाँ आएगी। खटिया में सोए होंगे, साइड चेंज करते रहेंगे, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसको लेकर के व्यक्ति जीता है। चौथा इल्यूजन है अ चेंज ऑफ डाइट, अ लिटिल जॉगिंग एंड अ गुड हॉलीडे। बाहर घूमने चले जाओ, माउंट आबू आ जाओ, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब तक उस सिचुएशन से बाहर आ गए, स्ट्रेस कम हो गया, यहां से जब वापस उसी सिचुएशन में, उसी माहौल में जाएंगे तो क्या होगा, फिर से स्ट्रेस, क्योंकि आपने उसको ट्रीट नहीं किया, मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाया नहीं। तो फिर जब उसी माहौल में जाएंगे तो फिर वही स्ट्रेस आरंभ हो जाएगा। इसलिए ये भी एक इल्यूजन है। पांचवा इल्यूजन है कि अदर पीपल, सिचुएशंस एंड इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्ट्रेस। अक्सर लोग दूसरों के ऊपर अंगुली, ये व्यक्ति के कारण ही सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है, ये परिस्थिति जब से आई ना तब से लेकर स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। अब सोचने की बात है कि अगर परिस्थिति मेरी मन की स्थिति को तनाव में ले आए, तो हु इज पावरफुल, माई सेल्फ और द सिचुएशन। कौन पावरफुल है, सिचुएशन पावरफुल है या हम पावरफुल है? हम पावरफुल है, वी आर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी होते हुए भी अगर एक सामान्य परिस्थिति मेरी मन की स्थिति पर हावी हो जाए, तो मानव मैं कितनी मेंटली कमजोर हो चुकी हूं, सोचने की बात है। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा, द मोमेंट आई पॉइंट आउट माई फिंगर टू अदर्स कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है मेरे मन के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, माना आई टोटली गिव माई लोकस ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स एंड दे कैन टेक चार्ज ऑफ माई मेंटल स्टेट एंड दे कैन ड्राइव मी मैड। जब हमने अपना लोकस ऑफ कंट्रोल ही उनके हाथ में दे दिया, यानी रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया, तो वो तो कोई भी बटन दबाते रहेंगे, और कोई भी बटन दबाते हुए क्या करेंगे, हर घड़ी आपको स्ट्रेस में ला सकते हैं। कभी कौन सी न्यूज दे देंगे, कभी कौन सी न्यूज दे देंगे, और हर रोज क्या हो जाएगा, कहेंगे रोज, कोई दिन खाली नहीं जाता है जब टेंशन न हो, कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। कैसी जीवन होती है ना। एक दिन अगर व्यक्ति खुश रहे, कोई बात को लेकर के खुशी में अगर आ जाए, तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछने लगते, क्या बात है, क्या बात है, आज खुश कैसे हैं, क्या बात है, आज खुश कैसे हैं। ऑफिस में गए, वहां लोग पूछना चालू कर देते हैं, क्या बात है। माना खुशी कितनी हमारे जीवन से गायब हो गई कि अगर एक दिन बाय मिस्टेक हम खुश रह भी गए तो तुरंत लोग पूछना चालू कर देते हैं और दिन के अंत तक हमारी खुशी गायब हो ही जाती है। फिर से क्या कहते हैं, पता नहीं एक दिन खुश क्या रहे, उसको भी नजर लग गई। खुशी एक पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी कैसे एम्पावर कर सकती है, सोचने की बात है। लेकिन यह भी एक इल्यूजन है और इसीलिए हम हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ये परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबल है मेरे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने का। सच पूछो, अपने अंदर देखना है कि मेरी शायद मेंटल इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है, मुझे अपने आप को एम्पावर करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। छठा इल्यूजन है कि यू हैव टू बी वर्किंग 14 आवर्स अ डे एंड कॉन्स्टेंटली मीटिंग डेडलाइंस, इसलिए स्ट्रेस होता है। इतना काम जो हो गया है, 14 घंटा काम करना पड़ता है, हमेशा डेडलाइन जैसे हमारे सिर पे खड़ी है, तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा। आज देखो किसी के घर में अगर शादी होती है, 18 घंटे लोग काम कर लेते हैं लेकिन खुशी होती है, तो वो 18 घंटा अगर लगातार 3-4 दिन काम करते हैं, थकावट होती है, थकावट होती है। खुशी का माहौल है, एनर्जी है, तो 18-20 घंटा भी काम कर लिया तो भी व्यक्ति को थकावट नहीं होती है। इसीलिए ये भी एक इल्यूजन है, इतना काम करना पड़ता है, डेडलाइन हमेशा होती है, इसलिए स्ट्रेस होता है, क्या करें। और एक है कि कई लोग कहते हैं कि बस ये सब सोच के ऊपर है, आप सोचो तो स्ट्रेस है, नहीं सोचो तो कुछ नहीं है। ये भी एक इल्यूजन है कि जरूरी नहीं कि सोचो तो ही स्ट्रेस है और नहीं सोचो तो स्ट्रेस नहीं है। नहीं, स्ट्रेस है, यानी प्रेशर इज ऑलवेज देयर। और एक इल्यूजन है कि कई बार कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए जीवन के अंदर, तभी पीक परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं। व्यक्ति के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तब वो अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। जो पीक परफॉर्मेंसेस होते हैं इंसान से, वो स्ट्रेस के बाद जिसको कहा जाता है कि हाँ वो सही है, उसको कहते हैं यू स्ट्रेस। जब तक वो पीक परफॉर्मेंस निकालता है, व्यक्ति खुशी में जब आकर के उसको निकालता है तो वो यू स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कुछ कह दिया, टोक दिया, या जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि शाबाशी नहीं मिली, तो उसके बाद जो डिस्ट्रेस में चला जाता है और वो डिस्ट्रेस वो हमारे परफॉर्मेंस नीचे ले आता है, हेल्थ पर इफेक्ट करता है, हमारा अटेंशन स्ट्रेन एंजाइटी वाला बन जाता है, फीलिंग हमारे अंदर एंजाइटी की आ जाती है और जो हमारी स्टेट है मेंटल स्टेट उसमें भी ऐसा डल महसूस करने लगता है कि एनर्जी जैसे फ्लो होना बंद हो गई है। जब तक पीक परफॉर्मेंस पर है उस समय एफर्टलेस चैलेंज फ्लो एब्जॉर्ब यूफोरिक और मेडिटेटिव स्टेट है। जब हेल्थ पर इफेक्ट नहीं करता है, जब तक यू स्ट्रेस में है तब तक, लेकिन जैसे ही वो बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, बहुत थिन लाइन होती है दोनों के बीच में, एक स्ट्रेस और यू स्ट्रेस के बीच में, और जैसे ही वो अगर उस तरफ चला जाए वो डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी स्ट्रेस लेवल व्यक्ति के जीवन के अंदर हाई होने लगता है। और इसीलिए वर्तमान समय मनुष्य जीवन कैसा है, इट्स लाइक अ सी गोइंग एडवेंचर आई वुड से। जस्ट जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार समुद्री यात्रा पर निकला था उस समय दुनिया के कोई नक्शे बने हुए नहीं थे. एंड ही सेट आउट ऑन अ जर्नी इनटू द अननोन टू चार्ट सम न्यू टेरिटरीज. निकला तो कुछ खोज करने के लिए. नक्शे है नहीं उसके पास. उसे यह भी पता नहीं है, पहली बार समुद्री यात्रा चल रही थी, उसे यह भी पता नहीं है कि समुद्री तूफान कैसे होते हैं और ना ही उसका जहाज उन तूफानों के हिसाब से बना हुआ था. चल पड़ा. उसे यह भी पता नहीं था कि समुद्र के अंदर जो जीव है, बड़ी बड़ी शार्क मछलियां, व्हेल्स, वो उसके जहाज को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है. लकड़े का जहाज था, कैसे उसमें छेद कर सकती है, यह भी मालूम नहीं था. चल पड़ा. उसे यह भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले करंट्स कितने पावरफुल होते हैं. एक नदी का करंट कितना पावरफुल होता है, समुद्र के करंट्स कितने पावरफुल है, उसका भी उसको कोई अंदाजा नहीं था. ही सेट आउट ऑन द जर्नी. एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास जो उसको नित्य दिशा बताता रहा कि किस दिशा में वो जा रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास ही वॉज सक्सेसफुल टू अ सर्टन एक्सटेंट. लाइफ इज ऑल्सो सच. जीवन भी कुछ ऐसा ही है. हम भी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है इट्स एन एज ऑफ अनसर्टनटी. अनिश्चितता का समय है. कल क्या होना है, वी हैव नो डेफिनेट मैप्स फॉर द फ्यूचर टाइम. एंड वी हैव सेट आउट ऑन दिस जर्नी इनटू द अननोन टू चार्ट सम न्यू टेरिटरीज. कुछ नया खोज करने के लिए हम चल पड़े हैं. हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में तूफान किस प्रकार के होंगे. हमें यह भी पता नहीं है, न उसके लिए हमारी कोई तैयारी है. हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में कौन से जीव हमारे पीछे लग सकते हैं. द शार्क्स एंड द वेल्स जो निगल जाए. हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में किस प्रकार के अंडर करंट्स चल रहे हैं समाज में, सिस्टम में, प्रोफेशन में, कौन से अंडर करंट्स चल रहे हैं. और कहीं उस अंडर करंट का शिकार हम बन जाए ये भी पता नहीं है, ना कोई तैयारी है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास वो कंपास भी नहीं है जो हमें दिशा बताए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं. सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, क्या कहेंगे, वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ गॉड. हु इज गॉड? आज दुनिया में इतने सारे भगवान हो गए हैं कि वो भी पता नहीं सही भगवान कौन सा है. सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, क्या कहेंगे, वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ सर्कमस्टेंसेस. वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ नेचर, आवर ओन सेल्फ. और हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है. हम सुबह उठते हैं अच्छे मूड में है, किसी ने फोन कर दिया, माइंड अपसेट हो गया. एक घंटा बीता, ऑफिस में गए, किसी ने अच्छी बात सुना दी, खुश हो गए. एक घंटा बीता, कुछ न्यूज मिल गई, स्ट्रेस होने लगा. एक घंटा बीता, किसी ने ऐसी हरकत की, गुस्सा आ गया. एक घंटा बीता, किसी ने मेंटली हमें डिस्टर्ब कर दिया अपनी हरकतों से. घंटे घंटे पर हमारी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल कहां है? अपने हाथ में है? है ही नहीं. सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ क्राइसिस इन टूडेज एज. क्राइसिस हमें चला रही है, चल रहे हैं एक दिशा में, वहां से धक्का लगा, दिशा बदली की, इस तरफ चले, यहां से धक्का लगा, दिशा बदली की, इस तरफ चले, यहां से धक्का लगा, मुड़ गए। ये हमारी लाइफ हो गई है। इसलिए कहा कि आज हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हमारे बच्चों को भी ज्यादा मालूम है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल, कि ये खबर हम अगर पापा को सुनाएंगे खुश हो जाएंगे, हमारी डिमांड पूरी हो सकती है, और ये खबर सुनाएंगे तो उनको गुस्सा आएगा, ये खबर सुनाएंगे तो अपसेट हो, वो भी रिमोट में वही बटन दबाते हैं। घर में आपके बच्चे, उनके हाथ में है रिमोट कंट्रोल, उनको पता है कब आपको खुश करना है, कब आपको गुस्सा दिलाना है कि नहीं है, वास्तविकता है या नहीं है, है? इसलिए कहा इन टूडेज एज देर आर 3 की प्रपोजिशन। पहला की प्रपोजिशन है देर इज नो टर्निंग बैक, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू those stable patterns of the past. As we will see a world characterized by global competition. Competition कितना बढ़ गया है, आज न्यूज में भी, न्यूज चैनल्स में भी कितना कॉम्पिटिशन हो गया है, और ये कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? कॉम्पिटिशन में जीतना है। हर न्यूज चैनल समझता है कि भाई हमें जीतना है, तो जीतने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट्स, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फिडेंस। ओके, लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे, क्या करेंगे फिर? क्या चाहिए? एफर्ट्स चाहिए। लोग आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? और हाँ, अलर्टनेस चाहिए। और क्या चाहिए? बहुत अच्छी एक कहानी याद आती है। एक बार दो व्यक्ति थे, जंगल से गुजर रहे थे। सडनली दे हर्ड अ रोर ऑफ अ लायन, शेर की दाड़ सुनी। तो उसमें एक इंडियन था, एक अमेरिकन था। इंडियन जो था उसने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ बाई पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज, आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो इंडियन कहता है, डोंट थिंक सो आई कैन रन फास्टर देन द लायन, लेकिन तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं, शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रहेगा, मैंने तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए जूते बदली किए। कंपटीशन में जीतने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, क्रिएट नहीं है, उसने हर्डल थोड़ी क्रिएट किया, सिचुएशन है, शेर है, भागना है, लेकिन हमें तेज दौड़ना है दूसरों से। दिमाग चाहिए और चालाकी नहीं कहेंगे उसको, विल पावर भी नहीं कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कि भाई जंगल में अगर शेर आ गया तो उसने अपने जंगल बूट्स तो लिए ही थे, लेकिन रनिंग शूज भी लिए थे कि भागना पड़े तो कम से कम दौड़ेंगे। अमेरिकन ने सोचा रनिंग शूज का जंगल में क्या काम, उसने लिया ही नहीं तो शेर का शिकार बन गया। भावार्थी है कि समय सूचकता, अमेरिकन्स के पास शायद बेस्ट क्वालिटी जूते होंगे, बहुत तेज दौड़ सकते ऐसे जूते होंगे, लेकिन वो लाया ही नहीं था, उसने सोचा उसका क्या काम वहां। तो एक इंडियन ऑर्डिनरी टेनिस शूज पहन करके भी जीत जाता है। हमारे पास अच्छी टैलेंट्स हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छी स्किल्स हो, सब कुछ हो, लेकिन समय पर याद ही नहीं आया, दूसरा कोई साधारण सी चीज से भी आगे निकल जाता है और उसके बाद हम देखकर कहेंगे अरे इससे अच्छी चीज तो हमारे पास थी, लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा है ना। कहने का भावार्थ मेरा यही है, कंपटीशन में जीतने के लिए इसको चालाकी नहीं कहेंगे, अपनी स्किल्स को के साथ हमेशा तैयार रहना, अपनी टैलेंट्स के साथ, अपने जो योग्यता है उसके साथ तैयार रहना। हमें न किसी को गिराना है, न किसी को नीचा दिखाना है, हम अपनी टैलेंट्स से आगे बढ़ना है। ये समय की पुकार है। दूसरा, रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन सच अ वे एंड टू अडॉप्ट आवर सेल्फ विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज अनदर ग्रेट चैलेंज। तीसरा, डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशंस, अनसर्टनटी, अनिश्चितता का समय है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सेलरेटिंग चेंज, टेररिज्म, मेनी अदर्स, वी कैन गो ऑन लिस्टिंग देम। जो आज की दुनिया के अंदर सिनेरियो है, सो देयर इज नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है ना। एंड देयरफॉर इस दुनिया में, इन हालातों में चलने के लिए सेकंड की प्रोपोजिशन, वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेयरिंग्स ऑन विच वी कैन रोल अपॉन स्मूथली। एंड इट इज सीन दैट द पीपल हु विल सक्सीड, सक्सेसफुल कौन हो सकता है, द पीपल हु विल सक्सीड विल हैव अ वेरी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ वेयर दे आर हेडेड टू एंड वॉट दे स्टैंड फॉर। कहां हम जा रहे हैं और किस आधार से चल रहे हैं। बहुत सुंदर टॉपिक यहां चूज किया है, रोल रिस्टोरिंग वैल्यूज, ये आधार है। व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, मीडिया एज अ होल, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। अगर वैल्यूज को छोड़ दिया तो वो ग्राउंड ही खत्म हो गया, पैरों तले की जमीन ही निकल गई, कितना सक्सेसफुल होंगे सोचने की बात है। और इसीलिए समय के हिसाब से ये टॉपिक जो रखा है, रिस्टोरिंग द वैल्यूज, के पुनः उन वैल्यूज को ले आना है, क्योंकि यही आधार है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। हमारे पास यहां एक बार ट्रेनिंग थी और वो ट्रेनिंग में एक यंग लड़का अहमदाबाद से आया था, वेरी स्ट्रेसफुल, इतना स्ट्रेस में था। किसी ने उसको कह दिया कि तुम ये ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग ज्वाइन करो, शायद तुम्हें कोई इनसाइट मिल जाए अपने जीवन के लिए, इसलिए वो यहां आ गया। जैसे जैसे ट्रेनिंग करता चला गया, उसका चेहरा बदलता गया। लास्ट डे उसने अपना फीडबैक शेयर किया और फीडबैक में उसने क्या सुनाया कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो एक लॉयर्स फैमिली थी, जहां दादा से लेकर सभी लॉ फील्ड से जुड़े हुए थे। उनके दादा जज थे, उनके पिताजी, चाचा, ताऊ, भाई, बहने सब लॉ फील्ड से जुड़े हुए थे। एंड दिस यंग मैन बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू गेट इनटू द सेम बिजनेस। कि भाई हमारा फैमिली विजन है कि वी शुड बी नोन एज द लॉयर्स फैमिली इन द होल सिटी, ताकि मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे पास आए हमारे बाप दादा के अनुभव के कारण, और इसीलिए तुम्हें भी लॉ कॉलेज ज्वाइन करना है एंड यू ऑल्सो हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन फुलफिलिंग दिस विजन। उसको लॉ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि फैमिली प्रेशर इतना था कि भाई तुम्हें जुड़ना पड़ेगा, ये हमारा खानदानी ये है, वेरी रिलक्टेंटली ही ज्वाइन द लॉ कॉलेज। लेकिन जैसे जैसे लॉ स्टडी कर रहा था उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था। फाइनली इतना स्ट्रेस हो गया उसको लाइफ में, समझ नहीं पा रहा था कि क्यों स्ट्रेस अंदर हो रहा है। जब यहां पर आया तो यहां जब हम ट्रेनिंग करा रहे थे तो ट्रेनिंग में एक सेशन आता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल स्वॉट एनालिसिस, पर्सनल स्वॉट। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। पर्सनल, हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है, हमारी वीकनेस कहां है, उसको आइडेंटिफाई करना, और वो एक वर्कशॉप की रीति से हम लोग करा रहे थे। जैसे ही ये सेशन से वो गुजर रहा था, उसको इतना पावरफुल इंसाइट मिला अपने लिए, और उसने महसूस किया कि उसकी सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ कहो या वीकनेस कहो, कि वो झूठ बोल नहीं पा रहा था, झूठ ही नहीं बोल पाता था। और उसने आइडेंटिफाई किया कि बचपन से लेकर जब भी उसने झूठ बोला, उसका फेस इतना रेड हो जाता था, कॉन्शियस हो जाता था, कि एनीबॉडी कुड आइडेंटिफाई कि ये झूठ बोल रहा है। अब ये व्यक्ति अगर लॉ बिजनेस में जाएगा तो कितना सक्सेसफुल होगा। मीन्स ही वॉज गोइंग अगेंस्ट हिज वैल्यू सिस्टम। उसकी जो इनबिल्ट वैल्यूज थी उससे विपरीत दिशा में, क्योंकि ये वैल्यूज ही कंपास है, ये वैल्यूज हमारा कंपास है जो हमें दिशा बताएगा, हमें जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। अब दिशा कंपास उसका यह बता रहा है कि उसकी सबसे पावरफुल वैल्यू सच्चाई थी, झूठ वो बोल नहीं सकता था, ये उसकी वीकनेस थी, और जब भी उसने झूठ बोला पकड़ा गया। अब वो गलत बिजनेस में जा रहा था, और वो फैमिली विजन को फुलफिल करने में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था उसका। मनुष्य में स्ट्रेस तभी बढ़ता है जब वो अपने कंपास से, कंपास जो दिशा बता रहा है उससे विपरीत दिशा में चलने का प्रयत्न करता है, तो अंदर में प्रेशर बढ़ता है, मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को माँ बाप फोर्स करते हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये कर रहा, और उसका कुछ पेंटिंग में शौक है, सिंगिंग में शौक है, वैल्यू सिस्टम से दूसरी दिशा में जाता है, और जब दूसरी दिशा में जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। आप सभी न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, इतनी न्यूज आपके पास होंगी, इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास कि कई बच्चों ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि दे वर नॉट कंफर्टेबल बीइंग अ डॉक्टर। उन्हें सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट था, क्यों सिंगिंग प्रोफेशन नहीं होता है, डांसिंग प्रोफेशन नहीं, खाली डॉक्टर और इंजीनियर ही प्रोफेशन हो सकता है। अरे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें ये वैल्यूज जो है, ये कंपास है, ये हमारे बेरिंग्स है, और इसके साथ अगर लेकर के चलो आप उस दिशा में, तो देखो सक्सेसफुल कैसे नहीं बनते, विदाउट प्रेशर सक्सेसफुल बनना आसान होता है। सो वी मस्ट फाइंड आवर बेरिंग्स, and it is seen that the people who will succeed will have a very highly developed sense of where they are headed to and what they stand for, as old reference points are just going to fall away and there is a need to steer through the turbulent times. aur ye bearings hi hame turbulence ke samay apne jeevan ko modne ki kshamta deta hai, shakti deta hai, isliye ka restoring वैल्यूज। मीडिया में भी जो वैल्यूज है उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो स्ट्रेस लेवल सबके अंदर बढ़ेगा, जितनी भी आपकी टीम है सबके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंड यू कैन नेवर विन दैट कॉम्पिटिशन क्योंकि यू आर मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। इसीलिए कहा कि पुनः अगर उसको ले आए तो शायद ये बेरिंग्स का काम करेगा, विच विल हेल्प अस to steer through the most turbulent times also. And so it is seen in the present time different skills are required, and these are not those skills ke jo hame schools mein trainings mein sikhaya jata hai, wo skills ki baat nahi hai. Ye hai self managing skills jo bhitar se usko tap karke bahar lani hai, jo hamara compass hai usko hame tap karke bahar nikalna hai. Like focus. Nobody can teach me how to develop a clear focus, tolerance, flexibility. Nobody can teach me. Koi training program aapko ye sikhayega nahi. It has to be tapped and brought out इन आवर ओन लाइफ। जब उनको लेकर चलेंगे तो ये स्किल्स आपको धीरे धीरे सक्सेस की ओर ले जाएगा। कई बार कई लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं, बहन जी आज के युग में वैल्यूज के साथ चलेंगे ना लोग हमारा एडवांटेज लेने लगते हैं, पता है आपको, या लोग हमें कुछ नहीं समझते, इसीलिए हमें ये तरीके अपनाने पड़ते हैं, दूसरे दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है मुझे इस समय पर कि एक बार दो रिसर्चर्स थे, उन्हें राजस्थान में भेजा गया रिमोट एरिया में जहां ब्लाइंडनेस डेवलप हो रही थी कि रिसर्च करो कि ब्लाइंडनेस का कारण क्या है। दोनों गए रिसर्च के लिए एक गांव में, पूछताछ की भाई किसी को रिसेंटली अगर ब्लाइंडनेस डेवलप हुई हो तो हम उनसे जाकर के मिले, उनसे पूछे क्या कारण था, क्या लक्षण थे, ताकि हम हेल्प कर सके उनको। पहला रिसर्चर जाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास, बाहर बैठा है वो अपने घर के आंगन में, उसकी रिसेंटली आईसाइट चली गई। उसके पास जाकर कहता है कि सुना है कि आपकी आंखें चली गई है, हम एक रिसर्च कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या आपके जीवन में ये अंधपना कैसे आ गया, शायद हम दूसरों को हेल्प कर सके, आप बताएंगे। वो व्यक्ति ने कहा क्या फायदा सुनाने का, सॉरी मैं नहीं सुनाऊंगा, मना कर दिया उसने। पहला रिसर्चर कहता अजीब बात है, आज की दुनिया में सच्चाई को लेकर चलेंगे ना कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं। सत्य बोला ना कड़वा लगा उसको, भाई अंधा है तो अंधा कहा, उसमें उसको फील क्यों करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने उसको डरा के धमका के अगर पूछा होता था ना तो शायद सब बता देता था। वैल्यूज के साथ चला नहीं जाता है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये उसका ओपिनियन था और वहां से निकल गया। वहीं वो दूसरा रिसर्चर भी जाता है उसी बुजुर्ग के पास में, उसके बाजू में जाके बैठता है और कहता है दादा सुना है कि आपकी आंखें चली गई है, बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे तो शायद हम कई लोगों के आंखें बचा सकेंगे, आप बता सकते हैं क्या हुआ था, सबसे पहला कौन सा लक्षण आपको महसूस हुआ, क्या हुआ, शायद आपको भी हम मदद कर सके। वो बुजुर्ग ने बैठ के पूरी सारी बातें सुनाना शुरू किया कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, और उसको सारे ये इंफॉर्मेशन मिल गई। उसने भी सच ही बोला था, दोनों ने सत्य बोला, पहले वाले ने भी सच बोला लेकिन रिस्पांस नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, दूसरे वाले ने भी सच ही बोला लेकिन उसको रिस्पांस मिला। दोनों के सच बोलने में क्या अंतर था, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तरीका अलग था। तरीके में क्या था, पहले वाले के तरीके में क्या था, पहले वाले के तरीके में क्या था और दूसरे वाले के तरीके में क्या था, उसने डायरेक्ट कह दिया और दूसरे वाले ने प्यार से बोला, सहानुभूति दिखाई, सम्मान दिया, एड्रेस ही उसको दादा करके एड्रेस किया और पहले वाले में औपचारिकता थी, दूसरे वाले में एम्पथी थी, है ना। माना कहने का भावार्थ ये है कि कभी भी वैल्यूज को अगर डायरेक्ट प्रयोग करेंगे ना कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, उसको प्रयोग करने का एक तरीका होता है। जिसका उदाहरण मैं अगर दूं कि आप लोगों में से डायबिटीज पेशेंट जो होंगे और वो ये शुगर फ्री लेते होंगे, अगर ये शुगर फ्री सीधी जीवा पर रख दो कैसा टेस्ट होगा? शुगर फ्री को सीधा जीवा पर रख दो कैसा टेस्ट होगा? बहुत कड़वा लगता है। लेकिन उसी शुगर फ्री को दूध में या चाय में घोल दो तो कैसा टेस्ट होगा? बहुत मीठा होगा। बस ये वैल्यूज जो है ना, शुगर फ्री है। सीधा प्रयोग किया ना, बड़ा कड़वा एक्सपीरियंस मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन उसी को अगर दूसरे वैल्यूज के साथ घोल दिया जाए, प्रेम, मधुरता, एम्पथी, सिंपथी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ये फीलिंग्स के साथ अगर घोल दिया जाए, कौन कहता है सक्सेस नहीं मिलता है? कौन कहता है सक्सेस नहीं मिलता है? और इसीलिए अगर स्ट्रेस फ्री होना है तो ये घोलने की कला अगर सीख लो तो देखो आप अपने प्रोफेशन में भी हर न्यूज को हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कहीं कोई आपको मात नहीं दे सकेगा। नहीं तो अगर आप तू डायरेक्ट पूछने जाएंगे ना तो कई बार देखते हैं कि कहते हैं नो कमेंट्स, आगे चल गए। कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, न न्यूज कलेक्ट कर पाएंगे, तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने आउटपुट नहीं दिया अपने चैनल वाले को या किसी को भी आउटपुट नहीं मिला तो क्या होगा? स्ट्रेस नहीं होगा क्या? स्ट्रेस जरूर होगा। सो दिस आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, कि ये जो स्किल्स है कि भीतर से अपनी ये शक्ति को बाहर निकालो और घोलना सीख लो। जब घोलना सीख लेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस क्या चीज है? किसी ने बहुत सही कहा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू द प्रेशर अपॉन द रेजिलियंस पावर, आंतरिक क्षमता और प्रेशर, बाहर का प्रेशर और अंदर की कैपेसिटी। आज की दुनिया में चैलेंजेस बहुत है और उस चैलेंजेस को फेस करने की जो इनर स्ट्रेंथ है बहुत कम हो गई है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अब ये स्ट्रेस को कम करना है तो दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला तरीका, या प्रेशर कम करो या तो आंतरिक शक्ति बढ़ा दो। यही दो तरीके हैं। प्रेशर को कम कैसे करेंगे? प्रेशर को कम करने के लिए चेंज योर कॉम्प्रिहेंशन, देखने का नजरिया बदल दो। और जब उसको देखने का नजरिया बदल देंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। या तो आंतरिक शक्ति बढ़ा लो किसी भी टेक्निक से, मेडिटेशन, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, रिपोस्चरिंग, इनर रिफ्लेक्शन, किसी भी तरीके से आंतरिक शक्ति बढ़ाओ तो हर प्रेशर को आप एड्रेस कर सके। ये दो तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। सबसे इजी तरीका कौन सा लग रहा है ये दोनों में? नजरिया बदल दो। लेकिन नजरिया बदलने के लिए भी आंतरिक शक्ति चाहिए। अगर ताकत ही न हो अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड ही न हो तो नजरिया कैसे बदलेंगे? इसलिए हर हाल में पॉजिटिव यानी आंतरिक शक्ति बहुत जरूरी, मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल रेजिस्टेंस पावर बहुत जरूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए। नहीं तो आज व्यक्ति बीच में है, प्रेशर चारों ओर से है। एक प्रेशर उसके ऊपर है पास्ट का, कई मेमोरीज है पास्ट की, अनरिजॉल्व सिचुएशंस है। एक प्रेशर है उसके ऊपर फ्यूचर का, जो अनिश्चितता का समय है जिसमें हम जी रहे हैं, उसके कारण कई प्रकार के भय, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फियर ऑफ सो मेनी फियर्स, वी कैन गो ऑन लिस्टिंग देम। वो फियर्स है, ऐसा हो गया तो, उसने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, कई प्रकार के फियर्स को लेकर जीता है तो वो भी एक प्रेशर बन जाता है। वर्तमान में दो प्रेशर है, एक जिसको कहते हैं इंटरनल प्रेशर, दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हम समझ सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रही है, कंपटीशन इतनी बढ़ रही है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इट इज अफेक्टिंग माय स्टेट ऑफ माइंड। और चौथा प्रेशर इंटरनल, इंटरनल प्रेशर कौन सा है? ऑफ माय ओन नेगेटिव थिंकिंग, मेरा अपना ही नकारात्मक विचारों का। और इसलिए जब व्यक्ति के अंदर ये चारों प्रेशर इकट्ठे कभी कभी आ जाता है, कभी पास्ट की मेमोरी भी आ जाती है, वर्तमान की हालातें भी होती है, गवर्नमेंट प्रेशर भी होता है, अपना ही नेगेटिव थिंकिंग इतना चलता है, और भविष्य का भय, ये चारों इकट्ठे हो जाए तो आंतरिक शक्ति कितनी होंगी उसके साथ कोप अप करने की? और जब इतनी शक्ति नहीं है कोप अप करने की तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा। और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? तब व्यक्ति के जीवन के अंदर इरिटेशन, रिएक्शन निकलने लगता है। और इसलिए किसी ने सही कहा, स्ट्रेस इज अ फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल। चाहे बाहर में कोई परिवर्तन हुआ जो हमारे हिसाब से नहीं था, चाहे घर के अंदर कोई परिवर्तन हुआ, अपने जीवन में कोई परिवर्तन हुआ जो हमारे हिसाब से नहीं था, तो एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स नेगेटिव निकलना शुरू हो जाता है। यह स्ट्रेस का पहला लक्षण। और जब वो निकलता है तो एक विशेष साइकिल में हम चले जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, पैनिक, फियर, वरी, ये विचारों में आ जाता है। और जैसे ही विचारों में आता है तो वैसी हमारी फीलिंग्स हो जाती है, भावनाएं वैसी बनने लगती है, अनरीजनेबल, नेगेटिव, इरेशनल। और उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पर, कई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर निकल आता है, इनएप्ट रिस्पॉन्सेज निकलता है, और ये हमारे परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। परफॉर्मेंस पुअर, अनप्रोडक्टिव, नॉन अचीविंग होता है, और फिर से नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है। एक ऐसी विशेष साइकिल है जिस विशेष साइकिल में से निकलना कभी कभी बहुत मुश्किल महसूस होता है, कैसे निकले समझ में नहीं आता है। और ये एक विशेष साइकिल में जो एक बार चला गया तो उसकी मेंटल एनर्जी इतनी ड्रेन होने लगती है, स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ड्रेन होने लगती है, और इसीलिए हमारी मेंटल इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसलिए हर छोटी बात स्ट्रेस क्रिएट करने लगेगी। इसलिए स्ट्रेस कहां से शुरू हुआ, प्रैक्टिकली हम देखते हैं उसको। कई लोग कहते हैं मेंटल लेवल पर थिंकिंग ऐसा है इसीलिए, कई लोग कहते हैं इमोशनल लेवल पर से शुरू होता है, कई लोगों को तो तब पता चलता है जब फिजिकल लेवल पर आ जाता है कोई ना कोई बीमारी के रूप में। इसीलिए डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं 70% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमेटिक रीजंस। लेकिन उसकी जड़ें कहां है? तो उसकी जड़ें हैं स्पिरिचुअल लेवल पर। और स्पिरिचुअल लेवल माना वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, हम यही भूल गए कि हम कौन है। वी हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ फिजिकली, ये भूल गए कि वी आर स्पिरिचुअल एनर्जी, हम एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, आत्मा है। अर्जुन की हालत जब हुई थी महाभारत के समय, उस समय दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको सबसे पहला ज्ञान कौन सा दिया? दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया, अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी उसको बताई कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, तुम क्या सोच रहा है, यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एट अ डिफरेंट लेवल। तो पहले तो हमारी आइडेंटिटी ही कई बार गलत हो जाती है, और इसलिए हमारा परसेप्शन बदल गया, नजरिया बदल गया, वैल्यूज हमारे बदल गए, हमारे अंदर की जागृति खत्म हो गई, और इसीलिए हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बदलकर ईगो डेवलप हो गया। वेरी थिन लाइन अगेन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। कई बार कई लोग सोचते हैं इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए ना, लेकिन होता है ईगो। और क्या कहते हैं, इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए ना, लेकिन वास्तव में वो होता है ईगो। इसलिए ईगो को हिंदी में बहुत सुंदर शब्द दिया है, अभिमान। अभिमान और फिर वो बदलता है अहंकार में। अभिमान शब्द को अलग करो, अभि प्लस मान। अभिमान कहां से शुरू होता है, अभिमान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए। पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, मैं कौन हूं वो जानते नहीं है, है ना? या अभी मेरी बात मानना चाहिए, यहां से अभिमान शुरू होता है। बड़े का अभिमान क्या होता है, घर में भी अभी मेरी बात मानना चाहिए। और छोटों का अभिमान क्या होता है, मान मिले तो माने। अब यहां क्लैश होता है, मान मिले माना एक रिकग्निशन एप्रिसिएशन मिले तो उसकी बात माने, हम इतना करते हैं एप्रिसिएशन तो देते ही नहीं है और अपनी बात मनवाते रहते हैं, तो वहां अड़ जाते हैं। और जब अड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। इसलिए आइडेंटिफाई किया है मेडिकल साइंटिस्टों ने कि अधिकतर जो स्ट्रेस दुनिया में है लोगों का, उसका कारण है ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस। एक परिवार में भी हस्बैंड वाइफ में अगर स्ट्रेस हुआ तो कारण क्या, ईगो प्रॉब्लम्स। बाप बेटे में अगर स्ट्रेस हुआ तो ईगो प्रॉब्लम्स। हर जगह ईगो प्रॉब्लम है और लोग उसको कहते इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। तो कारण कहां ना कहां स्पिरिचुअल लेवल पर है कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है, स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस पावर इतना लो हो गया है, इतना ड्रेनेज हो रहा है कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग में कि कहां से उसको बनाए ये पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि जब भी स्ट्रेस उत्पन्न हो, इट्स लाइक अ सिग्नल, इट्स अ मैसेंजर दैट कम्स टू टेल यू समथिंग, एंड द मैसेज इज स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल यू देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। कुछ अपने अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूरी है। एंड द पेन इज द मैसेज दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू लर्न। जीवन में चलते चलते हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया जो नहीं सीखना चाहिए था, इसलिए कुछ अनलर्निंग करना होगा और कुछ रीलर्निंग करना होगा। और ये रीलर्निंग करेंगे तब और स्ट्रेस को खत्म कर सकेंगे, स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे और तब माइंड इतना पीसफुल। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इन दिस एज ह्यूमन बीइंग्स हैव लेफ्ट देयर ओरिजिनल नेचर ऑफ ईज एंड दैट इज व्हाई दे हैव बिकम डिसईज्ड। डिजीज क्यों हो गए हैं, सरलता सहजता का जो स्वभाव है हमने छोड़ दिया है, बहुत दूर कहीं छोड़ के आ गए हैं। और इसलिए जहां सरलता ही नहीं रही जीवन में, सहजता ही नहीं रही, तो डिसईज्ड हो गए। वी हैव लेफ्ट आवर नेचर ऑफ ईज एंड दैट्स व्हाई वी हैव बिकम डिसईज्ड, है ना? तो इसलिए स्ट्रेस फ्री होना है तो तीन चीजें बहुत जरूरी है। कौन सी तीन चीज, प्रॉपर नरिशमेंट, शरीर के लिए भी ये तीन चीज चाहिए तो आत्मा के लिए भी ये तीन चीज चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। लेकिन मन के लिए नरिशमेंट कौन सा है, मन के लिए नरिशमेंट कौन सा है, अच्छे विचार। अब आप कहेंगे बहन जी हम मीडिया वालों को तो सारा समय नेगेटिव न्यूज ही कलेक्ट करनी पड़ती है क्योंकि पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज, नेगेटिव न्यूज ही न्यूज है। अब सारा दिन हमको नेगेटिव न्यूज कलेक्ट करनी होती है, अब सारा दिन अगर दिमाग को जंक फूड ही देंगे तो क्या हाल होगा, नेगेटिव न्यूज जंक फूड है। हम ये नहीं कहते कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप नेगेटिव न्यूज कलेक्ट करने नहीं जाओ, लेकिन कम से कम सबसे पहले सुबह सुबह जाने से पहले कम से कम अपने मन को एम्पावर तो कर लो अच्छे विचारों से, क्योंकि यही आपका पौष्टिक भोजन है। और जब मन को ताकत मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ेगा, तो आप हर प्रकार की न्यूज को लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो हमें अपने मन को एम्पावर करने के लिए भी अच्छे विचारों की आवश्यकता है। ये 3 दिन आप यहां रह रहे हैं, कोई कमरों में टीवी नहीं है, कोई कमरों में न्यूज़पेपर नहीं है, है ना? और सुबह से आपको स्पिरिचुअल इनपुट मिल रहा है, पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? कुछ मिसिंग हो रहा है लाइफ में? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, है ना? कहने का भाव ये तो एक टेस्ट दिया हमने 3 दिन के लिए कि सुबह सुबह में कुछ अच्छा नरिशमेंट मिल जाए तो फिर देखो सारा दिन कैसा होता है। हर नेगेटिव न्यूज के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। पहले अपने मन को तो सशक्त करो। मन सशक्त होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, मन सशक्त होगा तो विल पावर बढ़ेगा आपका। और ये मन सशक्त करने के लिए अच्छे विचार कहां से मिलेंगे? एकमात्र स्रोत है स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस इज द मिसिंग डायमेंशन इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। इसीलिए स्पिरिचुअल इनपुट्स थोड़ा दे दो सुबह सुबह में, ब्रेकफास्ट के रूप में ही दे दो आप, फिर दिन आरंभ करो, सक्सेसफुल हो जाएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरा है रेस्ट। रात को सो जाते शरीर सोता है, मन नहीं सोता है। सारे दिन की दिन घटनाएं जो है ना, सब कॉन्शियस लेवल पर इतनी चलती रहती है, चलती, इतना प्रभावित हो जाते हैं। मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। मेडिटेशन से मन को आराम मिलता है, साइलेंस में चले जाओ थोड़ी देर। कितनी देर करना चाहिए मेडिटेशन? सुबह में 20 मिनट, खाली 20 मिनट करो। क्यों मैंने 20 मिनट कहा? किसी ने बहुत सही कहा है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट बॉइलिंग टेंपर गुस्सा करता है तो 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। ये साइंस कहता है 5 मिनट का गुस्सा, बॉइलिंग टेंपर एंगर, 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। 2 घंटे तक वो अपना माइंड फोकस नहीं कर पाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। वो 2 घंटे में क्या करेगा फिर? माइंड डिस्टर्ब है तो क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा जहां अपनी बात का जस्टिफिकेशन देगा, मैंने गुस्सा इसलिए किया। ये हर रोज ऐसा करता है ना? और जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं, अच्छा किया तुमने आज उसको पाठ पढ़ाई दिया, तब जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो 10 लोग मेरे साथ तो है। लेकिन अगर वो 10 में से 1 ने कह दिया ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्या होगा? क्या होगा? फिर से फ्लेयर अप, फिर 5 मिनट गुस्सा कर दिया, 2 घंटे की कार्यक्षमता। और कई लोग जानबूझ के ऐसा कहते हैं ताकि आप फ्लेयर अप हो। और आप 20 मिनट गुस्सा करेंगे ना, सारा दिन कैसा होगा? कैसा होगा? कोई सक्सेसफुल काम, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा आपका। और आप यही दिन के अंत में कहेंगे आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, सारा दिन बेकार गया, कोई काम नहीं हुआ, सारा दिन बेकार गया, कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए हमने कहा सुबह जब उठते हैं ना 20 मिनट माइंड को रिलैक्स करो, बैटरी चार्ज कर लो। बैटरी चार्ज करेंगे, ये नहीं बातें नहीं आएंगी, ये नहीं परिस्थिति नहीं आएंगी, ये नहीं सर्कमस्टेंसेस नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल योर सेल्फ। क्या आप शांति से उस बात को हैंडल कर सकेंगे गुस्सा होने के बजाय, और सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, बैटरी चार्ज जो है। और फिर दिन के अंत में सोने से पहले फिर से 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, 20 मिनट मेडिटेशन सुबह, 20 मिनट मेडिटेशन सोने से पहले, ताकि रात आपकी अच्छी जाए और दूसरे दिन फ्रेश होके आप उठ सको। बस इतना ये स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन का रोल है हमारी लाइफ में। और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सा है? पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। इनपुट पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस पॉजिटिव चलेगा, आउटपुट पॉजिटिव निकलेगा। अगर इनपुट ही नहीं है, इनपुट ही नेगेटिव होगा, प्रोसेस नेगेटिव चलेगा, आउटपुट नेगेटिव। इसलिए हमने कहा सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ अच्छे विचारों का भोजन दे दो, प्रोसेस चलने लगेगा, आउटपुट पॉजिटिव निकलेगा, जीवन अच्छा होने लगेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग एंड आपका जीवन बहुत सुंदर होने लगेगा। स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, क्योंकि मेंटली एम्पावर हो जाएंगे तो स्ट्रेस फ्री होना आसान है। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के पास में? कई बार हम लोगों को कहते हैं मीडिया वाले, जब भी ये बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, बहन जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। ये पॉजिटिव जो है ना, अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन टाइम कहाँ है। बहुत सुंदर एक कहानी सुना के पूरा करूंगी मैं, जिसमें आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, काफी जगह काम ढूंढते हुए गया, सबने मना कर दिया। आखिर किसी ने उसको बता दिया, फलाने सेठ के पास चले जाओ, काम मिल जाएगा। चला गया वो सेठ, बड़ा लकड़े का व्यापारी था। उसने कहा मुझे काम चाहिए। सेठ ने पूछा क्या काम करोगे? क्या कुछ भी कर सकता हूं, यंग स्ट्रांग। तो सेठ ने कहा अच्छा लकड़ा काटना है, बोल काटेगा? कहा काटूंगा। पीछे गोदाम में ले गए, लकड़े का ढेर था, कहा ये सारे लकड़े काटने हैं। कहा ठीक है काटूंगा। सेठ जी ने कहा शुरू हो जाओ, देखे तेरी एफिशिएंसी कितनी है उसके आधार पर डिसाइड करूंगा। शुरू कर दिया उसने लकड़ा काटना, सारा दिन लकड़ा काटा सुबह से लेकर के दिन के अंत में। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही कितना लकड़ा काटा है। देखने गए तो देखा कि सचमुच उसने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है तेरी, चल तेरी नौकरी पक्की। नौकरी पक्की कर दिया। रोज सुबह आ जाने का 9 बजे, लकड़ा काटने का शाम को 5 बजे तक, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का आखिर क्या कर रहा है। दिन के अंत में जब चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उसने सिर्फ 15 लकड़े काटे थे। क्या बात है भाई, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, आज 15 ही लकड़े काटे, क्या बात है, एफिशिएंसी कम क्यों हो गई? लड़के ने कहा सेठ जी यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, सारा दिन मेहनत करता हूं, लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है कल से लेकर और मेहनत करूंगा। दूसरे दिन से और मेहनत करने लगा। 10 दिन और बीता, सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। देखने गया तो देखा सारे दिन में उसने सिर्फ 10 लकड़े काटे थे। क्या बात है, तुम्हारे एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? कहा यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों कम हो रही है, सारा दिन इतनी मेहनत करता हूं, आप किसी से भी पूछ लो, मैं आलस भी नहीं करता हूं, बैठता भी नहीं। सेठ जी तो अनुभवी थे, कहा कि एक बात बताओ, तुमने ये कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया 10 दिन 20 दिन में? लड़के ने कहा टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कहां है। क्या कहेंगे, समझदार कहेंगे या? सेठ जी ने कहा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या? अरे फर्स्ट थिंग यू कम इन द मॉर्निंग शार्पन योर एक्स, सुबह सुबह अपनी धार तेज करो तो कम मेहनत में ज्यादा एफिशिएंसी तेरी बढ़ेगी, कम तो नहीं होंगी, लेवल पर रहेंगी। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं जा रही थी। हम लोगों की भी एफिशिएंसी कम हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तनाव के कारण संबंध खराब हो रहे हैं, भागा दौड़ी बढ़ रही है, और अगर कहे धार तेज करो स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। अरे पहले धार तेज कर लो सुबह सुबह में, फिर देखो एफिशिएंसी कैसी है, तनाव कहां खत्म हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे, वैल्यूज को रिस्टोर कर सकेंगे आप, सक्सेस को प्राप्त करेंगे, कंपटीशन के अंदर भी घबराहट नहीं होंगी, विल पावर, कॉन्फिडेंस सब लेवल सारा बढ़ जाएगा। ये टेस्टेड है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, मेडिटेशन करने वालों की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा होती है, ट्राई करके देखो लाइफ में। मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाओ, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाओ, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति। आदरणीय बहन जी ने हमें व्हाट इज अ स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम स्ट्रेस, हाउ टू इम्प्रूव अवर स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में समझाया। मैं समझती हूँ अभी आप सब अपना जो भी यहाँ से जाएंगे तो सभी स्ट्रेस यहाँ ही छोड़ के, वहाँ जाने के बाद लाइफ ऑफ न्यू बिगनिंग, सभी यहाँ ही छोड़ के जाएंगे ना स्ट्रेस। तो हम सभी आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने करते हुए ध्वनि से।